पांच रात्र और वैष्णव मत। पांच रात्र मत के उपासकों को भागवत कहते हैं। हमारे आलोच्य काल के पूर्वार्ध की मुख्य घटना पांच रात्र संहिताओं का अभ्युत्थान है। यह निर्णय करना कठिन है कि संहिताएं कब और कहां लिखी गईं। श्रेडर ने अपनी महत्वपूर्ण कृति इंट्रोडक्शन टू दी पांच रात्र एंड अहिबोर्न संहिता में कहा है कि ईसवी सन के पूर्व भी कई संहिताओं का अस्तित्व था। ईसा की आठवीं शती के पूर्व लगभग 10-12 संहिताएं निश्चित रूप से लिखी जा चुकी थी। फरकोहर का अनुमान है कि अधिक संहिताएं 600 से 800 ईसवी तक में लिखी गई हैं। श्रेडर का कहना है कि अधिकांश संहिताएं उत्तर भारत में बनी और बाद में कुछ दक्षिण भारत में बनी। इन संहिताओं का अनुश्रुतिक संख्या 108 बताई जाती है, पर संहिताएं के जो भिन्न भिन्न नाम गिनाए गए हैं उसमें सामान्य नाम 11 से अधिक नहीं है। श्रेडर ने 210 संहिताओं का नाम गिनाया है। उनके मत से जिनमें से सबसे प्राचीन ये हैं: पौष्कर, वाराह, ब्राह्म, सात्व, जयाख्य, अहिर्बुर्ध्न्य, पारमेश्वर, सनत कुमार, परम, पद्मोद्भव, महेंद्र, कान्व, पद्य और ईश्वर। हमारे आलोच्य काल में ये संहिताएं या तो बन चुकी थी या बन रही थी। पांच रात्र संहिताएं में क्या है, शैव आगम की भांति इन संहिताओं में भी चार विषयों का प्रतिपादन है। प्रथम, ज्ञान अर्थात ब्रह्म जीव जगत के पारस्परिक संबंधों का निरूपण। दूसरा, योग अर्थात मोक्ष के साधन भूत योग प्रक्रियाओं का वर्णन। तीसरा, क्रिया अर्थात देवालय का निर्माण, मूर्ति स्थापन, पूजा आदि। और चौथा है चर्या अर्थात नित्य नियमित कृति, मूर्तियों तथा यंत्रों की पूजा पद्धति, पर्व विशेष के उत्सव आदि। परंतु बहुत कम संहिताओं में चारों विषयों पर ध्यान दिया गया है। कुछ में ज्ञान और योग का निरूपण है तो नाम मात्र को है, परंतु क्रिया और चर्या का विस्तार पूर्वक निरूपण सभी में हुआ है। पद्म तंत्र नामक संहिता में सभी बातें हैं। पर योग के लिए 11, ज्ञान के लिए 45, क्रिया के लिए 215 और चर्या के लिए 376 पृष्ठ खर्च किए गए हैं। इसी से संहिताओं का प्रधान वक्तव्य समझा जा सकता है। प्रस्तुत क्रिया और चर्या ही संहिताओं के प्रिय और प्रधान विषय हैं, और यही बात अन्य आगमों के बारे में भी सत्य है। इसलिए संहिताओं को वैष्णवों का कल्प सूत्र कहा जाना ठीक है। शास्त्रीय विभाग को छोड़ दिया जाए तो संहिताओं में तत्वज्ञान, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, माया योग, योग, मंदिर निर्माण, प्रतिष्ठा विधि, संस्कार, वर्णाश्रम और उत्सव, इन 10 विषयों का ही विस्तार है। पांच रात्र मत का प्रसिद्ध और विशिष्ट मंत्र चतुर्व्यूह सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार वासुदेव से संकर्षण जीव, संकर्षण से प्रद्युम्न मन और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध अहंकार की उत्पत्ति होती है। शंकराचार्य ने इस सिद्धांत का खंडन किया है। इस तथ्य से यह अनुमान किया जा सकता है कि उस युग में यही मत पांच रात्रों में अधिक प्रचलित रहा है होगा। सभी संहिताओं में यह सिद्धांत नहीं पाया जाता है। जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं उस काल में पांच रात्र संहिताएं निश्चय ही पूजा और अन्य व्रतादि अनुष्ठानों में प्रयुक्त हैं। दक्षिण में इस समय भी बहुत से मंदिरों में भागवत अर्चक हैं, और प्राचीन काल में और भी अधिक रहे होंगे। तमिल देश के अधिकांश मंदिरों में पांच रात्र संहिताओं के अनुसार पूजा होती है, परंतु अब भी ऐसे देवालय हैं जिनमें वैखाना संहिताएं व्यवहित होती हैं। कहते हैं कि रामानुजाचार्य द्वारा विरोध के कारण बहुत से मंदिरों से वैखानस संहिताओं का व्यवहार उठ गया और उनके स्थान पर पांच रात्र संहिताओं का प्रचलन हुआ। तिरुपति के वेंकटेश्वर तथा कांजीवरम के मंदिरों में अब भी वैखानस संहिताएं व्यवहित होती हैं। दोनों संहिताओं की अनुष्ठान विधि में पर्याप्त अंतर है। अप्पय दीक्षित का कहना है कि पांच रात्र मत अवैदिक है और वैखानस मत वैदिक। यह लक्ष्य करने की बात है कि वेंकटेश्वर के मंदिर में जहाँ आज तक वैखानस संहिताएं व्यवहित होती हैं, शिव और विष्णु दोनों की पूजा होती है और दोनों देवताओं का समान आदर होता है। कहते हैं कि रामानुजाचार्य ने वहाँ पूजा विष्णु की प्रधानता स्थापित की है। इससे यह अनुमान किया गया है कि रामानुजाचार्य के पूर्व भागवत अर्चक लोग दीर्घ काल से वैखानस संहिताओं का प्रयोग करते आ रहे थे। तमिल देश में इन भागवत अर्चकों की 12 वैखानस संहिताएं पाई गई हैं। भागवत मत के इन दो प्रकार की संहिताओं में यद्यपि चर्या और क्रिया का विस्तार ही अधिक है, तथापि भक्ति पर निरंतर जोर दिया गया है। वस्तुतः इन संहिताओं के मत से भगवान के अनुग्रह से ही जीव के मल का नाश होता है और वह उनकी कृपा से ही मुक्ति पाता है। इस प्रकार भवजाल से मुक्त होने का उपाय निरीह होकर भगवान की शरण में जाना न्यास ही है। जो भगवान के प्रति अनुकूलता के संकल्प, प्रतिकूलता के त्याग, रक्षकत्व के में विश्वास, गोप्ता या रक्षक रूप में वर्ण या आत्मसमर्पण और कार्पण्य अर्थात निरीहता से प्राप्य है, संहिताओं के अनुयायी द्विज के लिए यह आवश्यक था कि वह किसी योग्य गुरु से दीक्षा ले। इस दीक्षा में 5 बातें आवश्यक थी। प्रथम, ताप अर्थात शंख चक्र आदि की मुद्राओं को तप्त करके शरीर को चिन्हित करना। दूसरा, पुंड्र अर्थात तिलक। तीसरा, नाम, नया नाम स्वीकार करना। चौथा, मंत्र। पांचवा, योग अथवा पूजा। भगवतों के 2 मंत्र अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय। विक्रम की 7वीं शती से लेकर 10वीं शती तक तमिल देश में ऐसे भक्त गायकों का प्रादुर्भाव हुआ था जो भक्ति के उल्लास में एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक भजन गाते फिरते थे। अपने इष्ट देव की मूर्ति का वियोग इनके लिए असह्य था। इन भक्तों में शैव और वैष्णव दोनों थे। वैष्णवों में 10 संज्ञक आदि प्रसिद्ध हैं। इनके भजनों में रामायण, महाभारत और पुराण का प्रभाव अधिक बताया जाता है और संहिताओं का बहुत कम। शैव भक्ति में से भी 3 बहुत प्रसिद्ध हैं और लक्ष्य करने की बात यह है कि इनके भजनों पर भी आगमों का प्रभाव कम है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि तमिल देश में संहिताएं और आगम दोनों ही बाद में पहुंचे। लोग अस्पृश्यों को भी उपदेश देते हैं और कई तो अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों में उत्पन्न भी हुए थे। ये लोग श्री वैष्णव संप्रदाय के आदि गुरु माने जाते हैं। इनके भजनों की प्रामाणिकता स्वीकार की जाती है और मंदिरों में इनकी मूर्तियां पूजी जाती हैं। विक्रम के 8वीं शती के पूर्व कई भक्त हो चुके थे, परंतु इनके समय के विषय में अभी तक सर्वसम्मत मत स्थित नहीं है। विक्रम की 8वीं 9वीं शती के आसपास अष्टाक्षर मंत्र की प्रतिष्ठा हो चुकी थी और लगभग इसी समय की 2 ऐसी उपनिषदें उपलब्ध हुई हैं जिनमें अष्टाक्षर मंत्र की महिमा बताई गई है। ये हैं नारायण और आत्मबोध उपनिषद। आगे चलकर श्री वैष्णवों में अष्टाक्षर मंत्र मान्य हुआ था। 10 अवतारों की कल्पना बहुत पुरानी है, शायद बुद्ध से भी पुरानी। यद्यपि 10 अवतारों में बाद में बुद्ध का नाम भी आता है, तथापि नारायणी उपाख्यान में जिन 10 अवतारों के नाम है उनमें से प्रथम अवतार हंस है तथा 9वां और 10वां सात्वत और कल्कि। इनमें बुद्ध का नाम नहीं है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि अवतार की कल्पना बुद्ध से पहले की है। हमारे आलोच्य काल में नृसिंह पूर्व तापनीय और नृसिंह उत्तर तापनीय नामक 2 उपनिषदों का प्रचार पाया जाता है। इनमें नृसिंह मंत्र की महिमा है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि नरसिंह मत उन दिनों प्रतिष्ठित हो चुका होगा। पंच देवोपासक में नृसिंह और वाराह की पूजा प्रचलित थी। बाण भट्ट की कादंबरी में नृसिंह की वंदना और उस युग की अनेक वराह मूर्तियां पाई गई हैं। राम के अवतार को विशिष्ट उपास्य समझकर भी कोई संप्रदाय उन दिनों प्रतिष्ठित होना चाहिए। आलोच्य काल के पूर्वाधर्ध में राम पूर्व तापनीय और राम उत्तर तापनीय उपनिषदों का पता लगता है। अगस्त्य सुतेक्षण संवाद नामक इस काल की संहिता भी है जिसमें राम तत्व का बखान है। इस समय सूर्य और गणेश को प्रधान मानकर भी संप्रदाय अवश्य प्रतिष्ठित हुए होंगे। नेपाल और सौर संहिता नामक पुस्तक की एक प्रति मिली है जो 998 विक्रम की लिखी हुई है। बाण के समकालीन कवि मयूर के सूर्य शतक से भी पता लगता है कि सौर उपासना उन दिनों प्रचलित रही होगी। प्रसिद्ध जैन आचार्य मानतुंग के भक्तामर स्रोत से भी सौर उपासना का पता चलता है। उड़ीसा के सांब पुराण से सांब के द्वारा सूर्य पूजा के लिए मग या शाक दीपीय ब्राह्मणे को ले आने की बात है। अग्नि और गरुड़ पुराण में भी सूर्य की उपासना का उल्लेख है। इसी प्रकार गणपति तापनीय उपनिषद से गणपत्य संप्रदाय का भी अनुमान होता है। वैसे गणपति की पूजा इस देश में बहुत पहले से ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी।